मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। आज 27 सितंबर 2019 है, दिन है शुक्रवार। और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं एक बहुत ही खूबसूरत, बड़े संवेदनशील, छोटी सी लेकिन बहुत ही सामान्य सी घटना से करने जा रहा हूं, जो 3 दिन पहले ही मेरे साथ घटी थी। लेकिन आप देखिए कि इस छोटी सी और सामान्य सी घटना में वास्तव में कितना बड़ा संदेश छिपा हुआ है। तो आइए मैं इसी से शुरुआत करूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इसे ध्यान से सुने, या यूं कह लीजिए कि जरा सा डूब कर सुनने की कोशिश करें, तभी आप इसमें जो सार है, या कह लीजिए इसका जो रस है, इसका जो स्वाद है, उसको पकड़ पाएंगे। दरअसल हुआ क्या कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कितनी तेज बारिश हो रही है, और भोपाल में तो शायद कुछ ज्यादा ही हो रही है। लगातार बारिश बारिश और बारिश। दरअसल मैंने अपनी छत पर एक छोटा सा प्यारा सा किचन गार्डन लगा रखा है। अभी तो बेल वाली ही सब्जियां लगा रखी हैं, जिसमें तरोई है और बरबटी है, करेले हैं, गिलकियां हैं, सेम हैं, कद्दू है, ये सारी की सारी सब्जियां हैं। और उनके उनको बड़े आराम से ऊपर चढ़ा करके एक यूं कह लीजिए कि छावनी जैसी बना दी है। तो उसके नीचे बैठ करके बड़ा अच्छा लगता है। वो बेलें बिल्कुल खड़ी हैं और ऊपर फिर छा गई हैं, जैसे बेलों की छत सी बन गई हो। और डेली मेरी कोशिश होती है कि इतने पानी बरसने के बावजूद मैं एक बार तो वहां जाऊं और उसके नीचे थोड़ी देर के लिए खड़े होकर के सांस ले सकूं। बड़ा प्यारा लगता है और बड़ा सुकून मिलता है। लगभग लगभग ऐसा मैं रोज ही करता हूं। हुआ यह कि बीच में बारिश नहीं हुई और 2 दिन तक खूब तेज धूप पड़ी। ठीक है, जब तेज धूप पड़ रही थी तो मैंने जाना भी जरूरी नहीं समझा कि ठीक है, और बल्कि सच पूछिए तो अच्छा ही लगा कि चलिए थोड़ी सी गर्मी आ रही है और इन जो बेल सब्जियां लगी हुई हैं इनकी जड़ों को भी थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, तो ये बहुत अच्छे से फ्लरिश करेंगी। क्योंकि अखबारों में लगातार हम लोग पढ़ रहे थे कि सब्जियां खराब हो रही क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा भी लगा। लेकिन हुआ क्या कि 2 दिन की तेज धूप के बाद शाम को मैं वहां ऊपर गया, अपने यहां अपने ड्राइवर के साथ में ऊपर गया कि चलो देख करके आते हैं कि अपनी सब्जियों के क्या हाल हैं। दोस्तों, जब जैसे ही हम लोग ऊपर पहुंचे, मैं देख करके दंग रह गया, बेहोश होते होते बचा कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया। इतनी हरियालियों से भरी हुई, खिली हुई वो बेलें बिल्कुल मुरझा गई थी, और उनकी जो पत्तियां थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं पतझड़ का मौसम आ गया और कब से ये धूप झेल रही है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि ये सारी की सारी बेलें मर गई, और सच में वो मरने के करीब ही थी। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि ये क्या हो गया। बोले हाँ सर, ये तो सारे मुरझा गए। मैंने कहा कि लेकिन हमने मैंने जो नीचे हमारा लॉन है ग्राउंड फ्लोर पर, वहां भी कुछ बेल लगा रखी है, यूं कह लीजिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें करेले खूब फैल रहे हैं, सेम की बेल खूब फैल रही है, बिल्कुल हरी भरी हो गई है। मैंने कहा कि लेकिन नीचे जो लगे हुए हैं वही सेम है और करेले की बेल है, देखो बिल्कुल हरी भरी है, एकदम अच्छे से है। मैंने तो उन्हीं को देख करके ये सोचा था कि ऊपर की भी सब अच्छे अच्छे भली होंगी, तो ये क्या हो गया इनको। तो उसने एक बात कही कि सर असली में क्या है ना, कि वो जो नीचे वाली जो बेल हैं वो जमीन में लगी हुई हैं, तो उनकी जो जड़ें हैं वो जमीन में खूब गहराई तक और इधर उधर चारों तरफ फैल गई हैं, तो वो अपने जरूरत का जो पानी है वो इधर उधर से भी ले लेती हैं। अब ये ऊपर की बेल हैं, इनको हमने गमलों में लगा रखा है, अब उनकी जड़ें भी उतनी नहीं फैल पाई हैं, और गमलों में कितना पानी रहता है, थोड़ा सा पानी है, उसको जब तक वो खींच करके चलाती रही तो चलाती रही, अब जब उनको पानी नहीं मिला है तो अब ये सारी की सारी बेल सूख गई। दोस्तों, जैसे ही उसकी ये बात सुनी सुनी मैंने, ज्ञानोदय हो गया, और कोई बड़ा भारी ऐसा भी नहीं कि इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन ज्ञानोदय एक दूसरे पक्ष में हो गया। दूसरे पक्ष में ये इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसे अब जीवन पर अप्लाई करें, अपनी चेतना पर अप्लाई करें, तो उसका मतलब यह हुआ कि हम अपने संस्कृति में जितने गहरे डूबे हुए होते हैं, या यूं कह लीजिए कि हमारा आचरण, हमारे सोचने समझने का तरीका, हमारा बात व्यवहार, ये सब के सब हमारी बेल हैं, और इन बेल की जड़ें जितनी ज्यादा अपनी संस्कृति की जमीन की गहराइयों में होंगी, उतनी ही ज्यादा हमारी ये जो ऊपर की चीजें हैं, बात व्यवहार, भाषा, विचार, उतने ही ज़्यादा फरिश करेंगे, उतने ही ज़्यादा उनमें हरियाली बनी रहेगी, उतनी ही उनमें सुगंध बनी रहेगी और उतने ही उसमें फल और फूल भी आते रहेंगे। दोस्तों, यही है संस्कृति में जीना, अपनी ही संस्कृति में रहना। इसी को गीता में कहा गया स्वधर्म, यही मूलतः धर्म है। गीता के हिसाब से यही धर्म है, वहां कोई हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी की बात नहीं है। ये मनुष्य का धर्म है, यह जीवन का धर्म है, यह हमारी चेतना का धर्म है और यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई शक्तिशाली है तो सबकॉन्शियस माइंड। और दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि जितना ज्यादा वह अपने सबकॉन्शियस माइंड के स्तर पर जुड़ा हुआ है, उसकी जड़ें जितनी ज्यादा अपनी संस्कृति में धंसी हुई हैं, मैं धंसी हुई ही कहना चाहूंगा, वह अपने जीवन में उतना अधिक प्रबल है, उतना अधिक सफल है, उतनी अधिक ऊंचाइयों तक वह पहुंच पा रहा है, उतने अधिक लोगों को प्रभावित कर पा रहा है, उतने अधिक लोगों का वह प्यार भी अर्जित कर पा रहा है। और मुझे लगता है कि उसके न रहने के बाद वह उतने अधिक लंबे समय तक वह रह भी पाएगा। मैं अब थोड़ी सी 2-3 आपको उदाहरण देना चाहूंगा। हम लोग अमिताभ बच्चन जी के बारे में बात कर रहे थे। कभी आपने अमिताभ बच्चन जी की ताकत को जानने की कोशिश की कि उन्हें कहां से रस मिल रहा है? उनका लीवर हार्डली 25% काम करता है, तो उन्हें वो सारी शक्ति मिल कहां से रही है? क्यों वे इतने पॉपुलर हैं? हर पीढ़ी के लोग क्यों उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस तो उनके साथ काम करने को अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य समझते हैं? वो कौन सी चीज है? क्या उनकी एक्टिंग है, या उनकी लंबाई है, या उनकी प्रतिष्ठा है, या उनकी संपत्ति है, क्या है? नहीं मित्र, उनका जीवन रस है और वो जीवन रस मिल रहा है अपनी संस्कृतियों से। आप देखिए कि कौन बनेगा करोड़पति अभी तो चल रहा है, आप वाच कीजिए अमिताभ बच्चन जी को, भूल जाइए कि आप प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप वाच कीजिए उनके चेहरे मोहरे हाव भाव से लेकर के उनकी भाषा तक हर चीज को बारीकी से देखिए, तो आप पाएंगे कि आदमी तो पूरी तरह से बाहर अपनी संस्कृति में डूबा हुआ है। कभी भी विवाह शब्द नहीं बोलते, वो ब्याह शब्द बोलते हैं, सभी को बकायदे हाथ जोड़कर प्रणाम करते, नमस्ते नहीं करते और सिर्फ मुंडी नहीं हिलाते, बकायदे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ये सब क्या है? ये भारतीयता है। अभी आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब अभी अमेरिका गए थे, तो आप दो उदाहरण में हाउडी मोदी के समय का देना चाहूंगा। जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो लोग उन्हें गुलदस्ता दे रहे थे, तो गुलदस्ता देने के दौरान उस गुलदस्ते में से कुछ फूल की पंखुड़ियां नीचे कारपेट पर गिर गई। आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत झुक कर फूल की उन पंखुड़ियों को उठा करके अपने साथ चल रहे अपने असिस्टेंट को दे दिया। ये जो फूल की पंखुड़ियां हैं, इतनी कोमल हैं, इतनी प्यारी हैं, और हमारे यहां तो फूल एक तरह से आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, ये पैरों में कुचले नहीं जानी चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिकता का सवाल हो, चाहे वो कोमलता का सवाल हो। आप क्या समझते हैं कि ये छोटी बात है? ये कहां से आई अचानक? ये जो एक्शन आया, ये कहां से आया? किसने कहा कि तुम ऐसा करो? और वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, दूसरे देश में गया हुआ है, लेकिन ऐसा कर रहा है। कौन करा रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। कौन कह रहा है? वही भारतीयता से जुड़े हुए जुड़ी हुई जो आवाज है, जो आत्मा है, वो आपसे कराती है। आप सोच समझ करके ये सब चीजें नहीं कर सकते। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में मैंने पंकज त्रिपाठी, जो हमारे एक्टर हैं, उनके बारे में पढ़ा कि वो पहले किसी होटल में काम करते थे, मैनेजर थे, और जब उनके यहाँ मनोज वाजपेयी आकर के रुके तो मनोज वाजपेयी जी की जो स्लीपर है वो उन्होंने अपने पास रख ली स्लीपर, क्योंकि वो उनसे इतने ज्यादा प्रभावित थे मनोज वाजपेयी जी की एक्टिंग से, कि सोचिए ठीक वैसे जैसे कि भरत ने राम की खड़ाऊ रख ली हो। ये क्या है? ये खड़ाऊ और स्लीपर नहीं है दोस्तों, ये हमारी चेतना की गहराई है, आत्मा की आवाज है। जब वो उसे पा जाती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे दुनिया की अनमोल संपत्ति उसे मिल गई हो, पता नहीं उसने क्या पा लिया हो। और फिर लगातार ये जो चीजें हैं, ये हमारी आत्मा का सिंचन करती रहती हैं, हमारे जो दिमाग है उसको ताकत देती रहती हैं। यही है अपनी संस्कृति में डूब जाना। और जब हमारी जड़ें इस तरीके से अपनी संस्कृति में गहरे डूब जाती हैं, लगातार हमारी चेतना को नमी मिलती रहती है, उसे न तो कोई पतझड़ सुखा सकता है और न कोई विपत्ति उस पौधे को, उस पेड़ को हिला सकता है, उखाड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।